ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 14 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 6. பூரி ஸ்ரத்தா பிரேம் ஆர் பாவ் கே சாத் மங்களாச்சரண் கரெங்கே தாக்கி குரு ஆர் கௌரங்க கி கிருபா சே ஹம் இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் கோ சமஜ் சகே ஆர் இஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ ஜோ கே ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹ கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அஹம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாஶ்ய ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகணரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதம் சஹகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாஶ்ய. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபீஷ கோபிக காந்தா ஸ்ரீராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சனம் காரங்கே ஸ்ரீராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ஷபானோசூதிதேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய க்ருபாசிந்துப்ய ஏவச பதீதனம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கீ ஜெய் ஹோ. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே ஸ்லோக் நம்பர் 5 மே ஹமே பதாயா कि गुण क्या है. गुणों के विषय में संक्षिप्त में बताया. भगवान ने कहा सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्. यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण है कौन कौन से. सत्वम रजस्तम तत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण. हे महाबाव अर्जुन जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है. अब भगवान की मर्जी से आ गया तो वह इन गुणों से बंध जाता है. अब वो गुण पहले भगवान से ये जो गुणों के विषय में जितने भी क्वेश्चंस है ना वो एक एक करके भगवान खुद ही सॉल्व करते जाएंगे. हमें ये पहले ये जो जितना जितना हम लोगों का सवाल मतलब श्लोक है ना उतना उतना समझना है. ठीक है. गुणों को एक एक करके भगवान पूरा प्रकृति के तीनों गुणों के हिसाब से ये चैप्टर भगवान ने दिया है. थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के है ना मादी प्रकृति के तीन गुणों के विषय में है. पूरा सारा क्लियर करेंगे भगवान. फिर जो समझ में नहीं जो जो श्लोक है ना पहले वहां तक ही हम सीखते हैं. ठीक है. अब कल तो भगवान ने ये कहा कि देहदारी जब संसार में आ जाता है इन दोनों का मिलाप हो जाता है. किसका. प्रकृति का और जीवात्मा का. तो वो इन गुणों से बंध जाते हैं. पहले इन गुणों के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इन ये गुण क्या है. तो आज भगवान श्री कृष्ण पहले मुख्य गुण के विषय में बता रहे हैं और उसका नाम है क्या? सतोगुण। भगवान कहते हैं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अब यहाँ पर पहला है तत्र सत्त्वम्। तत्र मतलब वहाँ, सत्त्वम् मतलब सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो निर्मलत्वात् यानी कि भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण, ये बिल्कुल इसके अंदर कोई भौतिक कलमश नहीं है, एकदम शुद्ध है और इतना ज्यादा पवित्र होने के कारण प्रकाशकम् वो क्या करता है? प्रकाशित होता है, वो उसके अंदर प्रकाश होता है। और अनामयम् क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपराध नहीं होते। सत्वगुण में हम अपराध नहीं कर सकते, करते हैं क्योंकि शुद्ध होता है। जब हम सत्वगुण हमारे ऊपर हावी होता है तो वो प्रकाश हमें देता है, अंधकार नहीं होता है, तो अपराध नहीं होते हैं, पाप कर्म नहीं होते, तो क्या होता है? वो निर्मलत्वात होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये प्रश्न होता है ना, जब ये इतना अच्छा है, इसके अंदर प्रकाश होता है, इसके अंदर पाप नहीं होते हैं और भौतिक जगत से अशुद्ध नहीं होता है, तो फिर वो बांधने वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा है, पीछे ऊपर देखो, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अब इन गुणों से बंध जाता है यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी बंध जाता है, तो सत्वगुण तो इतना अच्छा है, फिर उसके अंदर बंधता कैसे? वो सेकंड लाइन में भगवान बताते हैं, सुख संगेन भदनाती। अब सुख संगेन यानी वो सुख उसके अंदर जब सत्वगुण में होते ना तो सुख के साथ बंध जाते हैं, और ज्ञान संगेन चानघ और ज्ञान की इच्छा से बांध देता है। चानघ हे निष्पाप रहित, पाप रहित अर्जुन, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम चानघ हो। चानघ का मतलब होता है तुम अपराध रहित हो। और यहाँ पर ये भगवान ने संबोधन दिया है, इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि ये वही, ये जो श्लोक है भगवान ने अभी बताया है, अर्जुन की इस क्वालिटी को मद्देनजर रख के, मतलब इस क्वालिटी को सामने रख के बताया है कि आप चानक हो, आप अपराधों से रहित हो, इसलिए इस बात को समझ सकते हो। और वास्तव में भक्तों जो मेन अपराध होते हैं ना, वो चार होते हैं। कौन कौन से? वाइन, विमेन, गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग। ये जो अपराध जो करते हैं ना, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक जब हमें प्रभु ने बताया था तो ये बताया था कि चानघ होना पड़ेगा, एटलीस्ट इन चार अपराधों से बचना पड़ेगा, फिर हमें ये वाला श्लोक या फिर इस तरह के श्लोक जो भगवान ने कहे हैं वो चानघ के लिए कहे, यानी कि उनको अपराध रहित होना पड़ेगा। और अब भगवान श्री कृष्ण हमें श्लोक में क्या बता रहे हैं, हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पर भगवान ने बताया ना, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, क्योंकि वो अन्यों से बिल्कुल शुद्ध होता है, तो क्या करता है? प्रकाशकम अनामयम, प्रकाश क्योंकि पाप कर्म उसके अंदर नहीं होते हैं, निष्पाप होने के कारण उपेक्षा अधिक शुद्ध होता है और प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पापों, पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। ये सत्वगुण के अंदर मनुष्य पाप की वृत्ति से बिल्कुल अछूता हो जाता है। सत्वगुण के अंदर पाप नहीं होते हैं, इसे भगवान ने कहा मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और वो बांधता कैसे आगे बताते हैं, जो इस गुण में स्थित होते हैं यानी जिसके अंदर ये सत्वगुण हावी होता है, सत्वगुण ज्यादा मात्रा में होता है, वे कैसे बनते हैं, वो केद में कैसे हैं? वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, यानी कि अब संसार में जितने भी आए हैं जीव बहुत प्रकार के होते हैं, एक उनकी क्वालिटीज कितनी होती है, यानी कि उनके अंदर 84 लाख तो योनियां हैं और योनियों के अंदर भी करोड़ों करोड़ प्रकार के जीव होते हैं, और हर कोई जीव की अलग अलग बुद्धि के हिसाब से वो अपना खुद डिसीजन लेते हैं और उसी के हिसाब से उनको सुख दुख मिलता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है, यानी कि सबकी अलग अलग सिचुएशन है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धा अवस्था का कारण स्वरूप है। अब जो मन, देखो इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मन उनके साथ सम्मिलित हो जाता है और मन के हिसाब से, क्योंकि मन अब क्या करता है उसके अंदर बद्ध हो जाता है ना, मन उसके हिसाब से, इंद्रियों के हिसाब से कार्य करने लगता है और जो जो स्थिति हमें भुगतनी पड़ती है, देखो यहाँ पर श्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था का कारण बनते हैं। और जब मनोभाव हमारा ऐसा हो जाता है कि मैं, मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है, तो फिर बद्धावस्था ये नहीं, वो जन्म इसके बंधे, वो चाहिए तो दूसरा जन्म, ये चीज चाहिए तो दूसरा जन्म बंधने का कारण बनता है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बंध हैं, यानी कि अब बंधन में कैसे आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण इसको करके क्लियर करेंगे कि आत्मा की तो कोई गलती नहीं है, वो बेचारी तो इसके अंदर फंस गई है। अब फंस गई है तो जाहिर सी बात है गुण उसको आना असरअंदाज करते हैं, फिर उसको क्यों बार बार आना पड़ता है। भगवान एक एक करके इस चीज को है ना हमें क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर बताया भिन्न भिन्न प्रकार से किस तरह बंधे हुए, भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। सर्वप्रथम सत्व गुण पर विचार किया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि पहली सत्वगुण के विषय, क्योंकि सत्वगुण में होते हुए मनुष्य क्या सोचता है कि मैं तो निष्पाप हूँ, अभी मेरे अंदर तो पाप कर्म है ही नहीं, क्योंकि सत्वगुण के अंदर तो पाप करते ही नहीं है ना, तो फिर उसके ऊपर सबसे पहले विचार किया गया है कि उसमें कैसे आप बंधते हो। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, क्योंकि सत्वगुणी होगा तो फिर ज्यादा ज्ञान उसको, सत्वगुण में क्या होगा, आप ज्ञान को अडॉप्ट कर सकते हो, आप अच्छे कार्यों को कर सकते हो, शास्त्र को अध्ययन कर सकते हो, ये जो सारे अच्छे कार्य है ना वो सत्वगुण में रहकर ही किए जा सकते हैं। भगवद गीता का श्रवण करना, मतलब भागवतम का श्रवण करना, कथा में जाना, संकीर्तन करना, जप करना और ना पूजा करना, प्रणाम करना, प्रसाद अर्पण करना, खाना, ये सारी जो अच्छी अच्छी चीजें तुम लोगों को समझ में आती है ना वो सब सत्वगुण में आते हैं। और यहाँ पर बताया क्योंकि सत्वगुण जो है वो इतना पुण्य वाला है तो मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सत्वगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, यानी कि उसके अंदर क्योंकि अब वो सत्वगुण में है तो वो शास्त्र अध्ययन करता है तो उसको भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, उसको अक्कल होती है कि ये जो कष्ट जो भौतिक आए हैं वो किस कारण से आए, तो इतना ज्यादा उसको दुखी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको अक्कल होती है कि ये मेरे शास्त्र उसने पढ़ा होता है, तो वो समझता भी, ये भी समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये तो सब शरीर मात्रा स्पर्श शास्त्र ये सब है, तो उसको इतना ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करते। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है। अब सत्वगुण कैसे आपको पता चले कि वो सत्वगुण में है, तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुण में माने जाते हैं, जो सत्वगुणी माने जाते हैं ब्राह्मण जो वाक्य में। अब आज के ब्राह्मण जो है ना सिगरेट पी के उसके बाद यज्ञ करवाते हैं या फिर इस तरह के ब्राह्मणों की बात नहीं करी, शुद्ध ब्राह्मण जो होते हैं जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली होती है, अपने नियमों का पालन करते हैं, अपनी जप संख्या जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और दूसरे जो अपने कार्य हैं उनमें निपुण होते हैं, जो वास्तविक ब्राह्मण होते हैं उनके विषय में कहा जाता है कि वो सत्वगुण है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। अब क्योंकि सत्वगुण में रहकर वो पाप नहीं करते, वास्तव में दुख का कारण क्या होता है, अपराध। हम जब अपराध करते हैं ना तो मानसिक रूप से भी हमें दुखी होते हैं कि हमने किया, मतलब उस टाइम पर करते समय हम कुछ भौतिक खुशी के कारण वो कार्य करते हैं, लेकिन हृदय से जो होता है आध्यात्मिक कष्ट हमें कंटिन्यूस मिल रहा होता है कि मैंने अपराध किया है, मानसिक रूप से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अगर पाप का किसी को पता चल जाए फिर तो मार पड़ेगी, तो इसलिए क्योंकि सत्वगुण में वो भय से मुक्त होता है और पाप कर्मों से मुक्त होता है, इसलिए उसे सुख का आनंद आ रहा होता है। अंदर से भी वो सुखी होता है और बाहर से भी, किसी से डरता नहीं क्योंकि अपराधी नहीं होता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। सत्वगुण का क्या मतलब वैदिक में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और सुख का अनुभव, इसको सत्वगुण कहा गया। अब ये कितना अच्छा है, तो ये बंधता कैसे है, उसको अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि सारी कठिनाई ये है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी कि जब सत्वगुण आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो अध्ययन करता है, ऐसे से कार्य करता है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, मुझे प्रणाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तो इस तरह का भाव ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है, इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है। और यही वजह है कि वो उसको बंधन में, क्योंकि अब उसकी इच्छा बढ़ जाती है ना कि मुझे आसन पे बिठाना चाहिए, मुझे पहले है ना अच्छा हर चीज मेरे साथ है ना, मुझे इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो ये जो है उसके कारण वो बद्ध जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। अब जो वैज्ञानिक और दार्शनिक यानी कि जो साइंस दान और फलसफा वगैरह जो होते ना, फलसफा दर्शन करते हैं, वो ज्ञानी होते हैं ना। अब देखो सत्वगुण का क्या मतलब है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, उन सबको कितना ज्ञान होता है कि वो कितने अच्छे से इन्वेंशंस करते हैं, बहुत साइंसदान कितनी अच्छी इजादात करते हैं, तो वो ज्ञानी होते हैं। लेकिन इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। यानी कि उनको ज्ञान इतना ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है ज्ञान के साथ साथ एक चीज पीछे पीछे आ रही होती है जो हमें नहीं पता होती है, वो होता है गर्व, होता है अहंकार। तो जैसे जैसे ज्ञान जिसके अंदर आता जाता है तो अहंकार भी उसके साथ आता है, और क्योंकि वो फिर अपने रहन, उनके अंदर ज्ञान होता है तो अपना रहन सहन, अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा बना देते हैं और उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में मुझे कितना सुख मिल रहा है। तो अब देखो ज्ञान अगर अलग से अडॉप्ट किया जाता है ना, ज्ञान अगर हासिल किया जाता है ना तो उससे ये होता है। लेकिन ज्ञान को जानते हो आप, मैं अभी आप ये बात थोड़ा हटके मैं भागवतम की बता रही हूँ। ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान है भक्ति के बेटे का नाम। जब कोई भक्ति करता है ना तो ज्ञान उसके पीछे पीछे आता है, फिर वो अपना गर्व नहीं, मतलब भक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। यानी कि 10.10 में भगवान ने कहा अब आप भक्ति करो, भक्ति का बेटा ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पीछे पीछे खुद ब खुद आएंगे। अगर वो खुद से आप हासिल करना चाहते हो ना खाली अलग से ज्ञान, तो फिर उसमें आपको अहंकार आता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो फिर विनम्रता आती है, क्योंकि भक्त का पहला गुण विनम्रता। तो जहाँ विनम्रता होगी, जहाँ पर हम विनीत होंगे, वहां पर गर्व या गर्व का अहंकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया चूंकि वो अपने रहन सहन को सुधार रहे थे अतः उन्हें भौतिक सुख अनुभूति होती। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अब उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ और सुख प्राप्त होता है, तो ये सुख का जो यह भाव है ना उन्हें भौतिक प्रकृति में और भी बांध देता है कि मुझे अब क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान हासिल करते जाएंगे ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, और वो क्योंकि समर्थ होते हैं तो उसको हासिल भी करते हैं और इस तरह से वो बंध जाते हैं गुणों के कारण। अतएव वे सत्वगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकर्षित होते हैं और वो चाहते हैं कि हम सत्वगुण में रहकर कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करें। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। ये है मेन प्रॉब्लम कि क्योंकि वो सुख हासिल करना चाहते हैं ना अपने ज्ञान के जरिए से, तो जब तक इस प्रकार कर्म करते रहेंगे जाहिर सी बात है सुख हासिल करेंगे, ज्ञान उनके पास है तो उनको कर्म करना पड़ेगा ना, और कर्म तो बांधेगा ना, कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहेगा, और जब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर मतलब कोई ना कोई सुख हासिल करने के लिए कार्य करते रहेंगे और किसी न किसी प्रकार का शरीर उनको धारण करना, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है ना, आत्मा उसके अंदर है बट इच्छा तो है ना, वो कर रहे हैं ना खुद। देखो श्रीला प्रभुपाद जी एक चीज बहुत ही हमेशा से ये उनका स्लोगन इतना मुझे अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर डिजायर। अपनी डिजायर पर नजर रखो कि कहीं वो बांध तो नहीं रही है। तो अगर मतलब सुख हासिल करने की इच्छा है ज्ञान के जरिए से, तो फिर इच्छा तो बांधेगी। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ कहते हैं जब तक इच्छा है तब तक यहाँ रहना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान की इच्छा हो, सुख की इच्छा हो, सत्वगुण में स्थित रहकर कार्य करने की इच्छा क्यों ना हो, जब तक इच्छा है इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक में जाने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने को खुश करने के लिए जो भी कार्य करोगे वो बांध देंगे। इच्छा केवल यही करनी है कि मैं कृष्ण को कैसे खुश रखूं, और यही इच्छा आपको कृष्ण के धाम में पहुंचाएगी। भगवान ने 8.5 में साफ साफ कह दिया, यो यम यम वापी स्मरण भावम तिरत्यन्ते कलेवरम तदम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सोच लो, देख लो कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। अगर यही सोच मरते समय भी बनी रही तो वापस आना पड़ेगा। अपनी इच्छा को प्रेरित करो मेरी मुझे खुश करने के लिए। इच्छा चेंज हो जाएगी फिर ही बचोगे। अपनी इच्छाओं को पूरे करते करते तो जन्म जन्मांतर का दुखी मिलेगा, भले वो आपको सुखी क्यों ना लगता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि इस प्रकार उनकी मुक्ति या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते। कौन? जो सत्वगुणी होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, वो सुख हासिल करने के लिए और भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा है, मतलब वो गलत कार्य नहीं करते हैं वैज्ञानिक ढंग से। तो अब लेकिन इच्छा तो रह गई ना, तो उसके लिए श्री रूपा जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि वह बारम्बार दार्शनिक यानी फलसफा जो करते हैं वो वैज्ञानिक यानी साइंसदान और कवि बनते रहते हैं और बारम्बार जन्म मृत्यु के इन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। अब माया में आ गए हैं। भगवान ने बता दिया कि बेटा देखो मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये महा ये जो दैवी ही है शागुणमयी, ये वाला जो श्लोक है ना उसको पकड़ के रखो, इसी पे जाएंगे सारा। 7.14 ये जो श्लोक है ना, ये अध्याय इसी के साथ जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान ने कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये गुणों से भरी हुई जो मेरी माया है ना, इसको पार करना बहुत 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 कठिन है। सत्व गुण में आके फंस गया बेचारा कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मुझे तो ये क्या बोल रहा है। देखो लास्ट लाइन में श्री प्रभुपाद ने कहा माया मोह के कारण वो सोचता है कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। कितना आनंदमय जीवन, इतना सक्सेस लाइफ मेरी है, मैं हर चीज को हासिल कर सकता हूँ, हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, और ये नहीं जानता कि इस ख्वाहिश को पूरे करने के लिए बार बार इस दुखालयम अशाश्वतम मृत्यु लोक में उसको बारंबार आना पड़ रहा है और अपनी शाश्वत स्वरूप को खो रहा है, अपने शाश्वत आनंद को खो रहा है। ये अज्ञानता उसके बारंबार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, यदि इन गुणों की माया के जाल से फंसने से बचना है तो फिर एक ही रास्ता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। सदैव कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन गुणों को भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।